भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज बहुत शुभ दिवस है। भृगु कच्छ के निवासियों के हर एक दिवस शुभ होते, क्योंकि आप सब नर्मदा माई के आश्रय में है। आप सब पवित्र नर्मदा नदी के किनारे में निवास करते हैं। तो विशेषकर आज शुभ दिवस है, क्योंकि ये शुभ भूमि की पूजा होती है भावी मंदिर का निर्माण करने के पहले। तो पुण्य भारत देश में बहुत 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 मंदिर है, और कुछ लोग शायद प्रश्न करेंगे, तो एक और मंदिर बनाने का क्या आवश्यकता है? ये मंदिर की क्या विशेषता होगी जिससे नया विशाल मंदिर का प्रकल्प है? तो आप सब जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, संक्षेप में इस्कॉन जो बोलते हैं, इनके संस्थापक आचार्य परम आराध्य परम पूज्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो प्रथम बार भारत के बाहर शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार किए, और उनका प्रचार का फल से आज लगभग सभी देश में हरि कृष्ण मंत्र, जो पहले केवल भारत में था, ये हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन फैला हुआ, और बहुत से लोग अभारतीय हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये चमत्कार किया है, कैसे? भगवान की कृपा से, इनकी पूरी श्रद्धा भगवान और भगवान का नाम है, और विशेषकर क्योंकि श्रील प्रभुपाद कीर्तन करने के साथ भगवद गीता यथारूप प्रचार किया है और शिक्षा प्रदान किया है, और श्रील प्रभुपाद के सब स्थापित मंदिर का उद्देश्य है, वो जैसे सब मंदिर जैसे लोग आएंगे दर्शन करेंगे भगवान का और कीर्तन में अंश ग्रहण करेंगे, कृष्ण प्रसाद लेंगे, नहीं सब मंदिर में कीर्तन नहीं होते। तो वो विशेषकर वैष्णव मंदिर में ये विशेषता है कीर्तन करना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में मंदिर स्थापन किया। भगवद गीता का उपदेश शिक्षा का आदान प्रदान करना, तो भगवद गीता है समस्त वैदिक ज्ञान का सारांश, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृत। भगवान स्वयं कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश तो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, तो सब मानव जाति के लिए, सब जीव के लिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ममाई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन शाष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कृष्ण ने कहा कि तो सब जीव मेरे अंश सनातन अंश, परंतु मन और सभी इंद्रियों से इस भौतिक संसार में सब कुछ सब जीव संघर्ष करते, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे हम सनातन है, हम कृष्ण का अंश है, और इसलिए हम आत्म परिचय करते शरीर और शरीर के उपाधियों के साथ। जैसे यदि एक व्यक्ति भारत में जन्म लेते हैं तो बोलते हैं मैं भारतीय हूँ, तो वो सही है, लेकिन वो केवल वो क्षणिक जीवन, वो एक क्षणिक जीवन के संबंध में सही है। तो भारतीय होने के पश्चात क्या होगा? ऊर्ध्वंगा चन्ति सत्वस्थ, शायद स्वर्गीय होगा, भारत से स्वर्ग जाएगा। और मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, यदि सत्वगुणी है तो स्वर्ग जाते, यदि रजोगुणी है तो वापस इस भूमंडल आते हैं। और जघन्य गुण वृत्ति स्तो अधोगा चन्ति तामसाः, और यदि एकदम नीच काम करते हैं तमोगुणी होते हैं तो वो व्यक्ति का जन्म नीच होगा। जैसे कर्म वैसे फल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान कृष्ण भगवद गीता में देते हैं। वो भगवद गीता प्राथमिक आध्यात्मिक शिक्षा है, और जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी, ऐसे तो यूनिवर्सिटी शिक्षा वैदिक शिक्षा उत्तम स्तर की शिक्षा है श्रीमद् भागवत। परंतु आजकल भारतीय लोग भी नहीं जानते भगवद गीता का ज्ञान, गर्व से कहो हम हिंदू है ऐसे कहते हैं, लेकिन गीता में क्या है, क्या शिक्षा है तो नहीं जानते। और स्कूल कॉलेज में और सेक्युलरिज्म निरपेक्ष नाम से गीता शिक्षा मना है, ये स्वतंत्र भारत की स्थिति है। तो स्वतंत्र है राजनैतिक विचार से, परंतु माया से स्वतंत्र नहीं है। और वास्तव में हमें समझना चाहिए कि हम स्वतंत्र नहीं है और कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब भगवान से अधीन है। तो भारत की राजनैतिक स्वतंत्रता का चरम फल वैसे होना चाहिए, सबको प्रचार करना कि भगवान कृष्ण निरंतर है और हम सब उनके अधीन है, हम सब उनके दास है। जैसे गुजरात में वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ आचार्य का प्रदान से बहुत सारे लोग बोलते श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे वो ही समझना चाहिए, वो ही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारा शरण है। तो कृष्ण के अलावा कोई योग्य नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है हमको शरण देना। भगवान कृष्ण सबको शरण दाता है, परंतु हमें राज्य होने चाहिए वो शरण, भगवान की रक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ये सब शिक्षा वैदिक संस्कृति का सारांश है, और प्रत्येक इस्कॉन मंदिर से ये शिक्षा देना वो मंदिर निर्माण करने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर केवल मंदिर नहीं हो, तो शिक्षण केंद्र, वैदिक शिक्षण केंद्र, वैदिक ज्ञान और वैदिक संस्कृति। तो वास्तव में वो संस्कृति तो स्कूल से नहीं सीखना चाहिए, संस्कृति तो घर से शिक्षा लेना चाहिए, नहीं तो वैदिक संस्कृति में सबके प्रथम गुरु कौन है? माता, क्योंकि माता वो एकदम जन्म का समय से तो संस्कृत लालन पालन करते हैं, तो उससे माता तो गुरु नहीं होते है, क्योंकि कुकुरी कुत्ती भी वो दूध पिलाते हैं बच्चे को, तो माता तो प्रथम गुरु है, गुरुवी, गुरुवी बोलते हैं। इस प्रकार क्योंकि संस्कृति का शिक्षण देते हैं, और थोड़ा संस्कृति की शिक्षा प्राप्त करके वो बच्चे पंच वर्ष की वयस में या उससे थोड़ा अधिक योग्य होते हैं गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए। तो गुरुकुल जाते हैं तो पूरी वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, परंतु उसके पहले वैदिक संस्कृति, तो कैसे गुरुजनों को सम्मान देना, कैसे भगवान को माना, और कैसे वो सब कुछ, कैसे हाथ से भोजन लेना, वो भोजन तो कृष्ण प्रसाद होने चाहिए, वो सब कुछ, कैसे शौच करना, मल मूत्र निकालने के बाद कैसे हाथ धोना और स्नान करना, ये सब, तो ये सब संस्कृति है। आजकल वो संस्कृति तो प्राय लुप्त है, तो पूरा नहीं है, यदि पूरा लुप्त हो गया तो आजकल आप सब पुण्यात्मा तो नहीं आते, क्योंकि आपके खून में ये संस्कृति है, ये भाव है कृष्ण के प्रति, इसलिए आप यहाँ आए हैं, आप सब बहुत उत्साही है कि यहाँ पर कृष्ण वामन देव का मंदिर निर्मित होगा। परंतु वो संस्कृति, वो सब विशेष का आचरण, वो कैसे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, तो आधुनिक तथाकथित शिक्षा में से वो सब तो प्राय लुप्त हो गया। और एक और भी कारण है कि आजकल हर एक घर में तो माता तो गुरु नहीं है, गुरु है टीवी, शैतानी शिक्षा देने वाले टीवी, जिससे वो शुरुआत से बच्चे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वो यही सब सीखते, काम मत वो सब आधा नंगी लड़कियों का नाच होते नहीं, उससे काम बढ़ते हैं, लोभ, इस ये चीज खरीद लो वो चीज खरीद लो, अलग अलग चीजों का खरीदना है लोग, क्रोध, तो टीवी टीवी पर बहुत हिंसा दिखाना है, उससे क्रोध मोह तो पूरा मोह है टीवी। हाँ तो ये सब संस्कृति के पूरा नाशक है। तो हम यहाँ पर प्राचीन वैदिक संस्कृति शुद्ध सात्विक जो है, जिससे दुर्लभ मानव जन्म की वास्तविक सफलता आसानी से मिलती है, वो ही शिक्षा हम देना चाहते हैं। तो हम देना चाहते हैं क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं। ये संस्कृति क्या है? दूसरा नाम है धर्म। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्म से तदात्मानं सृजामि अहम्। भगवान स्वयं आते हैं हर एक युग में, जब जब धर्म ग्लानि होते हैं, धर्म का ह्रास होते हैं, भगवान स्वयं आते हैं। परित्राणाय साधुनं विनाशय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जन का उद्धार करने के लिए और दुष्ट जन का संहार करने के लिए भगवान कृष्ण, और धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान हर एक युग में आते हैं। तो भगवान स्वयं वैदिक संस्कृति और धर्म के परम पोषक। तो हम अभी कलि युग के बीच में हैं। अब सब लक्ष्य किए हैं क्या? सर्वत्र कलि युग के लक्षणों प्रकट है। जैसे मैं सर्वप्रथम गुजरात आया था कितने 30 साल के पहले, तो कितना बड़ा अंतर हो गया है 30 साल में। प्रगति हो गई, रोड बनाना, फैक्ट्री बनाना, ये सब, लेकिन संस्कृति तो कहाँ गए तो नहीं है। हर एक कोने में अंडा ऑमलेट बिकते हैं, जो पहले गुजरात में नहीं था, क्योंकि लोग तो सब जानते थे कि ये पाप ही है। आजकल वो विचार तो कोई नहीं करते, आप सब करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। क्या देखा कल हम रथ यात्रा में, रास्ते में एक बहुत बड़ा दुकान भरूच में, ऑमलेट ऑमलेट का दुकान, ऐसे शायद आप सब देखो। तो यदि यही प्रगति है तो अच्छा हो, तो यही सब प्रगति बंद कर दो, उससे दुर्गति हो जाए। दुर्गति का मतलब मानव जन्म नष्ट करके लोग तो नरक जाते और दुनिया को नरक बनाते। तो ये वैदिक शिक्षण से हम भगवान श्री कृष्ण का प्रचारित धर्म का पुनः पुनर्स्थापन करना चाहते हैं। यही कलि युग में भगवान का अवतार नाम के रूप में है, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होय सर्व जगत निस्तार। भगवान का अवतार कलि युग में उनका नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो कैसे भगवान का अवतार है? भगवान तो जब आते हैं तो अद्भुत लीला कहते हैं, नहीं? और ये खाली शब्द है, तो इससे क्या अद्भुत, क्या चमत्कार होते है। कैसे नाम भगवान है और कैसे कृष्ण नाम भगवान का अवतार है, तो ये चमत्कार करते हैं कृष्ण नाम कि मैं जैसे बहुत 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 लोग जो भारत से दूर रहते हैं और भारतीय विशुद्ध संस्कृति से और भी ज्यादा दूर रहते थे, अभी शुद्ध वैष्णव बन गए और ठीक कॉफी तक कुछ नशा कभी भी नहीं लेते। जो पहले वो हमारी पश्चिमी तथा कथित संस्कृति में चाय पीने तो वो तो है, शराब पीना वो मुख्य है, शराब विस्की वो सब। और व्यभिचार सभी प्रकार के व्यवसाय और मांसाहार और सब सभी प्रकार का व्यसन जो पुण्यशाली भारतीय लोग जानते हैं वो तो पाप है, तो वो सब पश्चिमी संस्कृति के आधार है। हरे कृष्ण नाम महामंत्र के द्वारा बहुत बहुत पश्चिमी लोग तो वो सब बिल्कुल त्याग किया। ये भगवान का चमत्कार है, भगवान की शक्ति, भगवान की दया के बिना ये तो संभव नहीं था। तो यही प्रमाण है कि कृष्ण नाम कृष्ण ही है। और भगवान परित्राणाय साधुनाम विनाशय यथा दुष्कृताम, तो दुष्ट लोग का संहार करते हैं, तो कृष्ण नाम से क्या वो सब राक्षस तो अचेतन होते मार जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो खाली युग में यदि सभी राक्षस का वध करना है तो बहुत कम लोग रहेंगे दुनिया में, क्योंकि प्राय सभी लोग तो राक्षस जैसे बन गए हैं। तो वो राक्षसी स्वभाव जो सबके हृदय के अंदर में है कलयुग में, उसको वध करते हैं हरे कृष्ण नाम महामंत्र। तो एक और मुख्य उद्देश्य है मंदिर बनाना कि यहां से हम हरे कृष्ण कीर्तन का प्रचार करना चाहते हैं। आज तक कलयुग का प्रभाव बहुत शक्तिमान होते हुए भी, तो फिर भी भारतीय लोग तो इतने ज्यादा पुण्यवान है कि बहुत से लोग बहुत उत्साही है हरे कृष्ण कीर्तन करना। यदि हम प्रचार करते हैं कीर्तन करना, विशेषकर गांव गांव में बहुत से लोग बहुत उत्साही है हरे कृष्ण कीर्तन में अंश ग्रहण करना। तो वास्तव में ये भारत देश तो पृथ्वी में सबसे बड़ा होना चाहिए। कैसे कैसे संभव कि भारत एक नंबर देश हो जाएगा? वैसे कि पूरा दुनिया में बहुत प्रगति हो गई है, अफ्रीका में भी बड़ा स्काईस्क्रेपर लंबा बिल्डिंग है नहीं रामदास? आप अफ्रीकन गुजराती है, आपका जन्म वहाँ अफ्रीका में था, वहाँ पर भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और हाईवे भी है, कार है, वो सब कुछ है, सब देश में यही सब फैला हुआ। लेकिन पूरे पूरे दुनिया के लोग बहुत असंतुष्ट है और जो असंतुष्ट है तो संतुष्टि प्राप्ति का मार्ग लेना चाहते, लेकिन वो मार्ग क्या है नहीं जानते। इसलिए यदि भारतीय लोग भगवद गीता यथारूप का प्रचार करेंगे तो पूरा दुनिया के लोग ग्रहण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपदेश है भारतीय लोग के प्रति, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिनके भाग्य है भारत में जन्म लेना मनुष्य शरीर पर, तो उनका कर्तव्य है जन्म सार्थक करी, सार्थक मतलब सफल बना, और करो पर उपकार, दूसरों का कल्याण के लिए प्रयास करना। तो सार्थक, ये शब्द का अर्थ, शब्द का एक अर्थ है पैसा, और यहाँ पर समृद्ध गुजरात में बहुत बड़े पैसे वाले हैं, खास पटेल जाति प्रसिद्ध है, पैसे वाले है, सब तो नहीं लेकिन लगभग सभी है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का उपदेश नहीं है तो पैसा कमाने से ही सफलता होते है। सार्थक, अर्थ का दूसरा अर्थ, शब्द का दूसरा अर्थ है मीनिंग, मीनिंगफुल, सार्थक मीनिंगफुल, मतलब सबका जीवन में वास्तविक दिशा होने चाहिए। सफलता भक्ति सफलता, आध्यात्मिक सफलता, यही चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। तो हरि भक्ति से सबका जीवन सफल बनना चाहिए, और करो पर उपकार, पर उपकार दूसरों का उपकार और परम उपकार, पर ये शब्द के दो अर्थ है। तो हम सामान्यतः हम देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति तो बहुत बड़ा पैसा वाला धनी बन जाते हैं तो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ये सब। परंतु चैतन्य महाप्रभु का प्रचार में पर उपकार उस शब्द का अर्थ है उस सबको वो ही उपकार देना जिससे श्रेष्ठ कल्याण है। तो स्कूल हॉस्पिटल ये सब बनाने से कुछ समय के लिए कुछ उपकार होते हैं, वो सब शारीरिक सामाजिक उपकार होते हैं। श्रेष्ठ उपकार है वो उपकार जिससे जन्म कर्म चमे दिव्यमेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजुना। परम उपकार वो है जिससे पुनर्जन्म नहीं होते, और वो कैसे संभव है? भगवद गीता की शिक्षा देने से, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अच्छी तरह पूरी तरह जानते हैं कि मैं कृष्ण, मेरी लीला पूरी चिन्मय है, वो भौतिक नहीं है, भगवान कृष्ण परम दिव्य पुरुष है, वो जो व्यक्ति यही सत्य वचन को पूरी तरह ग्रहण करते हैं और जानते हैं, वो केवल वो ही वाणी समझने से तो भगवान के धाम जाते हैं और इस दुखमय जगत में वापस नहीं आते। तो वो ही शिक्षा देना परम उपकार है, और यही मंदिर का मुख्य उद्देश्य है, भगवद गीता का प्रचार फैलाना, और सब लोग को वो ही शिक्षण और प्रशिक्षण देने, जिससे वे पूरे पृथ्वी के लोग का परम उपकार कर सकेंगे। तो यहाँ पर मंदिर होगा, शिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, और यहाँ पर बहुत 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 आनंद होगा, क्योंकि कृष्णा परमानंद मूर्ति है और इनकी भक्ति से हम सब परमानंदित होंगे। और इसी आशा से हम यहीं पर मंदिर बनेंगे। हरे कृष्णा।